अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेया बलादिव नियोजितः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो आज के इस श्लोक में अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, जो दार्शनिकों के लिए हमेशा उलझन वाला विषय रहा है। कि विषय है कि पाप, इंग्लिश में इविल जिसे कहते हैं, उसका अस्तित्व क्या है? कैसे वो उत्पन्न होता है? किस प्रकार से कार्य करता है? कुछ लोगों के अनुसार बाइबल में, जैसे आज की जो मान्यता है उसके अनुसार, तो जो पाप पुरुष है तो वो हमेशा भगवान एक तरफ है और वो पाप पुरुष एक तरफ है, सटन, और दोनों में हमेशा जैसे मानो संघर्ष चलता रहता हो, और वहां पर स्वर्ग और नरक का विवरण है बाइबल में। एक्चुअली हम देखें तो वो विवरण जो है वो हमारे शास्त्रों में भी है। स्वर्ग नरक है, और वो जिसके जिसे भगवान और जिसे बुरा कह रहे हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो वो डीमंस और डेमिगॉड, देवता और असुर, और वो लोग स्वर्ग को परम मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो समझ रहे हैं जिस स्तर तक, वो भौतिक स्तर पे समझ रहे हैं, पाप पुण्य देवता असुर स्वर्ग और नरक। इसलिए उनका जो थ्योरी है वो अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक ही है, संपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर उसका संपूर्ण विवरण मिलता है कि ये सब कैसे होता है। तो ये प्रश्न हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं जो आस्तिक हैं उनमें से, कि सब कुछ भगवान करवाता है, पाप और पुण्य दोनों, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना हाथ धो के आओ। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए जो व्यक्ति पाप कर रहा है वही भगवान की इच्छा है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा है, पाप है या पुण्य है। फिर एक अन्य मत है सांख्य, नास्तिक सांख्यवाद, कपिल भगवान का सांख्यवाद नहीं, नास्तिक सांख्यवाद। उसके अनुसार जीव केवल चेतन है, क्रियाशील नहीं है। इसलिए जो क्रियाशीलता है, एक्शन है, डूअर है, वो जीव है ही नहीं। वो तो केवल इस वर्तमान स्थिति में एक उपदृष्टा के रूप में बैठा है, विटनेस की तरह से, और सब कुछ हो रहा है गुणों के द्वारा। वो केवल कॉन्शियस है, इज ओनली कॉन्शियस, बस उसको वो चेतन है, दैट्स ऑल। वो कुछ क्रिया नहीं करता है, वो केवल चेतन है। और जो क्रियाएं हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो तीनों गुणों की वजह से हो रही हैं। तो वर्तमान में जब जीव ये तीनों गुणों के संसर्ग में है, तो जो गुण है वास्तव में, वो जो गुण है वो अचेतन है। ये गुण भौतिक प्रकृति के अंश हैं। भौतिक प्रकृति चेतन है कि अचेतन है? भौतिक प्रकृति जड़ है या चेतन है? भौतिक प्रकृति चेतन है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु जड़ है ना, तो भौतिक प्रकृति इन चीजों की बनी है और तीनों गुणों के द्वारा संचालित है, तो जड़ है। तो उनका कहना है कि जब जीव और ये भौतिक प्रकृति का मेल होता है, तो जो जीव क्रियाहीन है वो क्रियाशील लगता है, और जो गुण जड़ है वो चेतन प्रतीत होते हैं। ये शरीर चेतन प्रतीत होता है जब आत्मा के संसर्ग में आता है। ये शरीर चेतन, जैसे काम, जैसे कॉन्शियस है, माइंड जैसे कॉन्शियस है, वो कार्य कर ऐसा, लेकिन वास्तव में चेतनता गुण आत्मा का। तो इसलिए उनकी फिलॉसफी के अनुसार जीव कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, और इसलिए केवल उसके समझना है कि मैं इससे अलग हूं, बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भौतिक जगत का अंश नहीं हूं, मुझे इससे कुछ लेने देने नहीं है। बस अगर वो ये समझ जाए तो तुरंत वो सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाए और निष्क्रिय सदैव के लिए बस केवल जो उसकी स्वाभाविक, जो उसकी तथाकथित स्वाभाविक स्थिति है चेतनत्व की, उसको प्राप्त कर ले। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो बस केवल ब्रह्म हूं, मैं कुछ क्रिया नहीं करता। ये उनकी फिलॉसफी, यानी कि एक विचार है और एक और है तीसरा, कर्म मीमांसा। तो जिसमें कहा गया है व्यक्ति पूरी तरीके से अपने फलों का विधाता है, जैसा वो कर्म करता है वैसा उसको परिणाम मिलता है। तो तीन प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक जिसमें कर्ता को, जीव को माना गया है कि जीव करता है, जीव के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरा है जिसमें गुणों को कर्ता माना गया है, प्रकृति कर्ता है। और तीसरा है जिसमें परमात्मा को कर्ता माना गया है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवद गीता में हम देखें तो जो लोग ये मानते हैं कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, तो वो इस श्लोक का उदाहरण दे सकते हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि अहंकार वश व्यक्ति सोचता है कि वो करता है, लेकिन वास्तव में कर्ता कौन है? प्रकृति के तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जो लोग सोचते हैं कि व्यक्ति करता है, जीव करता है, तो वो इस श्लोक को उद्धृत कर सकते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, कि अपने सुख और दुख को बनाने वाला व्यक्ति स्वयं है। और जो कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो वो अंततः कह सकते हैं ये श्लोक, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं पूरी प्रकृति तो मेरे ही वश में काम करती है, तो एक भी मान लिया जाए गुण भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंततः तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही द्वारा काम कर रहे हैं, तो फिर कर्ता कौन है। तो इस विषय पर जो सांख्य दर्शन, नास्तिक सांख्यवाद का दर्शन है कि प्रकृति करता है, ये गुण करता है, तो उसको उसके विषय में उसका उल्लंघन, उसको गलत सिद्ध किया है व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में। उन्होंने कहा है कि शास्त्र कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात्, ये वेदांत सूत्र है, कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात्, जिसका अर्थ है कि शास्त्र जो हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो शास्त्रों में अनेक ऐसे वचन हैं जहां पर जीव को कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है कि स्वर्ग जाने के लिए ये करो, और ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। तो यदि कोई चेतन करता नहीं है, कोई चेतन करता नहीं है, तो फिर शास्त्र के जो ये सब वचन हैं कि ये करो ये मत करो, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। समझ आ रहा है? अगर कोई चेतन करता नहीं है, अगर कोई केवल गुण है, गुण तो क्या है, चेतन नहीं है, अगर हम कहेंगे गुण करता है लेकिन गुण तो चेतन नहीं है, तो फिर ये वचन कौन सुनेगा और कौन इसको अमल करेगा? गुण तो चेतन नहीं है, तो ये जो शास्त्र कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा मत करो, तो किसको कह रहे हैं? यदि आत्मा कुछ करता नहीं है तो ये वचन किसके लिए कहे जा रहे हैं, कौन करेगा फिर इसको? तो कर्ता शास्त्रार्थ वत्वा, तो शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, तो बकवास तो नहीं हो सकता, उनका अर्थ है। तो अर्थ है तो हम कैसे मान सकते हैं कि केवल प्रकृति गुण ही करता है और जो जीव है वो केवल दृष्टा है, बस विटनेस, तो ये नहीं माना जा सकता। फिर जो लोग कहते हैं कि सब भगवान करते हैं, यहां प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो कई लोग सोचते हैं परमात्मा करते हैं सब, हम मंदिर क्यों नहीं आ पाते हैं? भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए मंदिर नहीं आ पाते। जब भगवान की इच्छा होगी तो मंदिर आ जाएंगे, पुस्तक पढ़ो, अभी भगवान की इच्छा नहीं इसलिए पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे, तो भगवान के ऊपर डाल देते हैं, सब कुछ नहीं डालते हैं, उनको पार्टी में जाना होगा, भगवान की इच्छा थी लगता है इसलिए हम जा रहे हैं। तो भगवान पांचवें अध्याय में कहे हैं, ना दत्ते कसचित पापम न चैव सुकृतम विभुः, अज्ञानेन आगतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कसचित पापम न चैव सुकृते च विभु, ना तो मैं किसी के पाप का कारण हूं और ना ही मैं किसी के पुण्य का कारण हूं। तो विभु किसके लिए कहा गया है? विभु कौन है? भगवान को विभु कहा गया है, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के पाप का या पुण्य का कारण नहीं हूं। तो कौन कारण है? अज्ञानेन आगतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जीव जो अज्ञानता से घिरा हुआ है वो अपने पाप और पुण्य का कारण है। तो पाप का कारण भी अज्ञानता है और पुण्य का कारण भी अज्ञानता है। ये कैसे? पुण्य का कारण भी अज्ञानता और पाप का कारण भी अज्ञानता है, ये कैसे? तो जितनी भी नैतिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, जो भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाने के अलावा अलग रास्ते पे है, वो अज्ञान का ही प्रकटीकरण है। या विद्यालयों में जो टेक्निकल नॉलेज, जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा से अलग है, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उनकी तरफ ले जाने वाला नहीं है, वो सब क्या है? अज्ञान है। अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो किसी को बड़ा अभिमान हो सकता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मुह्यन्ति, मुह्यन्ति मतलब मोहित हो जाना। तो अज्ञान क्या करता है? लोगों को मोहित करता है। किस चीज के लिए मोहित करता है? कि सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविकता क्या है, नकली क्या है, इसमें भेद नहीं कर पाते। इसे कहते हैं मोहना, मुह्यन्ति। तो भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जड़ माया और वैभव, जितनी भी जड़ विद्या है वो सब क्या है? माया का वैभव है, अज्ञानता का वैभव है। माया मतलब अज्ञानता, मा अयम जो नहीं है, इल्यूजन, वो सब अज्ञानता का वैभव है। और उससे परिणाम जीव को रहे, जीव के को रहे गधा। ये जीव को क्या बनाती है? गधा। जानवरों में सबसे बड़ा मूर्ख जानवर किसको माना जाता है? गधे को माना जाता है। जैसे गाली देने तो बोलते हैं यू एस, तुम गधे हो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम गधे हो बोल दिया मतलब सबसे बड़े मूर्ख हो। तो बच्चों ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जता है माया रो वैभव जीव को रे गधा। जितनी भी जड़ विद्या है, जितनी भी पीएचडी हैं, जितनी भी डिग्रियां हैं, या नैतिकता है, जो भी कुछ है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता है, वो सब अज्ञानता का वैभव है, जड़ विद्या का वैभव है। क्यों? क्योंकि वो हमारी और भगवान की जो संवैधानिक स्थिति है, जो वास्तविकता है हमारी और भगवान की, या इस भौतिक जगत और भगवान का जो वास्तविक संबंध है, उससे वो अलग है, इसलिए वो अज्ञान है। तो ऐसे अज्ञान में आवृत होकर के व्यक्ति या तो पाप करता है या तो सुकर्म करता है, पुण्य करता है, पर दोनों ही क्या है? अज्ञानता है। इसकी उपमा दी गई है मल से, गीला मल या तो सूखा हुआ मल। तो पाप और पुण्य को ज्यादा अंतर नहीं है, एक सूखा हुआ मल है और एक गीला मल है। तो अगर सूखे मल को घमंड हो जाए, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, मैं सूखा मल हूं, तो क्या वास्तव में घमंड करने योग्य चीज है? मल तो आखिर मल है, सूखा है कि गीला है, उसमें कोई भेद नहीं है, मल मल है, त्यजनीय है। तो पाप और पुण्य दोनों ही अज्ञान है, क्योंकि दोनों ही हमारे भगवान के साथ शाश्वत संबंध से के अंतर्गत नहीं है। पुण्य कर्म क्या है? इस भौतिक जगत में कंफर्टेबली रहने के लिए किए गए प्रयास। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम अच्छा करेंगे सबका, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, जिससे कि हमें भविष्य में हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। लेकिन हम स्वर्ग में जाने के लिए नहीं बने हैं, ना नरक में जाने के लिए बने हैं, ना पृथ्वी पर रहने के लिए बने। एको बहुश्याम, भगवान ने अपना विस्तार किया है जीवों में, किस लिए? आनंद वर्धन के लिए। तो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा करें, न कि इस भौतिक जगत को आरामदायक स्थल बनाने के लिए प्रयास करें। तो पुण्यकर्म क्या है? इस भौतिक जगत को आरामदायक स्थल बनाने का प्रयास। तो वो क्या है? थर्ड क्लास जेल से फर्स्ट क्लास जेल में जाने का प्रयास। तीसरे दर्जे का कैदी वो सोचता है अभी मैं फर्स्ट क्लास जेल में आ गया हूं, प्रमोशन हो गया मेरा, या लोहे की जंजीर छोड़कर के सोने की जंजीर से बंधने को श्रेष्ठ मानना। मेरी जंजीर सोने की है, तुम्हारी लोहे की है, मेरी सोने की जंजीर है। जंजीर जंजीर है, जंजीर बांध रही है। जितना सोने की जंजीर से व्यक्ति बंधा है उतना ही लोहे की जंजीर से बंधा है, करेक्ट। उसमें क्या अंतर है, सोने की जंजीर से बंधे उसे लोहे की जंजीर से बंधे। तो उसी प्रकार से पुण्य कर्म भी हमको इस भौतिक जगत में उतना ही बांध रहे हैं जितना कि पाप कर्म बांध रहे हैं। वो रिलेटिवली अच्छा बुरा है उसके अंदर, लेकिन इंट्रिंसिकली अपने आप में वो पुण्य कर्म अच्छा नहीं है। तो इसलिए यहां कहा गया है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये दोनों ही अज्ञानता है, पाप कर्म पुण्य कर्म। तो ये कारण है जीव के पाप और पुण्य का, अज्ञानता। तो वास्तव में जो जीव है उसका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। सत चित, चित मतलब क्या होता है, ज्ञानवान। तो जीव ज्ञानवान है तो फिर अज्ञानता में कैसे आ जाता है, जीव ज्ञानवान है लेकिन अज्ञानता में कैसे आता है, अज्ञानतम आवृतम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। उसका जो ज्ञान है सत्चित आनंद जो हम कह रहे हैं, जो उसका ज्ञान है जीव का, वो क्या हो जाता है, आवृतम, ढक लिया जाता है। तो यही अंतर है विभु और अणु में। तो भगवान जो विभु हैं उन्हें अज्ञान कभी ढक नहीं सकता है, लेकिन हम हालांकि ज्ञानवान है लेकिन भगवान की तरह परम ज्ञानवान नहीं है, छोटे हैं। इसलिए अज्ञान, ज्ञान हमारे पास रहता है लेकिन वो ढक सकता है, आवृत हो सकता है। जैसे सूर्य कभी बादल से नहीं ढका जा सकता लेकिन हम बादल से ढके जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पाप और पुण्य का कारण मैं नहीं हूं। तो कारण क्या है, अज्ञानता। तो ये जो श्लोक जिसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम, किस वजह से व्यक्ति पाप करता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जाने कि अनजाने में विवश होकर के पाप करता है, कई बार तो जान करके पाप करता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि उसको कोई विवश कर रहा है, उसको कोई जबरदस्ती कर रहा है उसको पाप करने के लिए, ऐसा क्यों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसका अगले श्लोक में उत्तर देंगे, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि कारण क्या है, मैं नहीं हूं कारण इसका कि मैं प्रेरित कर रहा हूं। कौन प्रेरित कर रहा है, रजोगुण प्रेरित कर रहा है। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, काम वासना उत्पन्न होती है, और जब काम वासना पूरी नहीं होती है तो वो किस में बदल जाती है, क्रोध में बदल जाती है, और क्रोध से क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहन, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति क्षति खत्म हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे क्या करना चाहिए, और स्मृति भंशात प्रणश्यति फॉल डाउन। बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्य, थैंक यू, बुद्धिनाश से प्रणश्यति, आदमी का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो तीनों गुण हैं ये हमको बिल्कुल जकड़े हुए हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। इसलिए कहा गया कि ये जो अलग अलग योनियां हम लोग भुगत रहे हैं, सत असत जन्म योनिषु, वो तीनों गुणों की वजह से हम भोग रहे हैं। तो इन गुणों में हमारे ये जो गुण हैं ये हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब समुद्र में होता है तो उसकी लहरें कभी उसे ऊपर उठा देती हैं और कभी उसे डुबो देती हैं, तो वो बिल्कुल विवश होता है, हेल्पलेस कंडीशन में होता है। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है इन तीनों गुणों के अंतर्गत, हम हेल्पलेस कंडीशन में होते हैं। तो जो व्यक्ति तमोगुण से प्रेरित है, तमोगुण के अंदर है, तो वो तमोगुण के अनुसार कार्य करता है, जो रजोगुण में है उसके अनुसार कार्य करता है, और जो सत्वगुण में है वो सत्वगुण के अनुसार कार्य करता है। लेकिन ये गुणों में हम फंसे हैं अपनी इच्छा से, गुणों में हमारे फंसने का कारण हम हैं। इसलिए कहा गया है पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष, हम खुद अपने सुख दुखों के लिए अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल कॉज, जैसे जेल है, अभी एक कैदी की पिटाई हो रही है, तो उसकी जो पिटाई हो रही है उसका कारण क्या है? एक कारण तो है जो पिटाई करने वाला पुलिस ऑफिस जो भी है, पुलिस मैन, इमीडिएट कॉज, क्योंकि डंडा कौन मार रहा है उसको? वो व्यक्ति मार रहा है। और उसके आगे जाओ तो और रिमोट कॉज कौन सा है, और नेक्स्ट कॉज कौन सा है कि पुलिस ऑफिसर ने उसको ऑर्डर किया है मारो, तो एक्चुअली वो इमीडिएट कॉज है, लेकिन उसके ऊपर कॉज है वो पुलिस ऑफिसर जिसने आदेश दिया मारो। लेकिन क्या वो पुलिस ऑफिसर अल्टीमेट कॉज है उसकी पिटाई होने का? क्या वो उत्तरदायी है उसके लिए, उसकी पिटाई होने के लिए? क्या वो कैदी बोल सकता है ये मेरी पिटाई कारण ये पुलिस ऑफिसर, या कोई व्यक्ति जाके बोले फिर जेल में आके ये पुलिस ऑफिसर कितना निर्दयी है, या ये पुलिस वाला कितना निर्दयी है, देखो उसको पीट रहा है, बेचारे को पीट रहा है, कोई ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। सबको पता है कि जेल में पुलिस ऑफिसर उसको लेके नहीं आया, पुलिस ऑफिसर जाके पकड़ा, लेकिन क्यों पकड़ा? क्योंकि उसने गुनाह किया, करेक्ट? नहीं तो पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशन के बाजू में आपका घर हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, भले उसके बाजू में आपका घर हो। लेकिन अगर आप गुनाह करोगे तो आप कैदी बन जाओगे। तो इसे रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी कौन हुआ उस पनिशमेंट का? वो कैदी खुद हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी कारण के पीछे, कोई भी इफेक्ट के पीछे कई कारण होते हैं, इमीडिएट कॉज एंड रिमोट कॉज। तो वो सब कारागार बनाना, रूल्स बनाना, ये सब सरकार करती है, वो रिमोट कॉज है, सैंक्शन करता है सब। लेकिन रेस्पॉन्सिबल कॉज कौन है? उत्तरदायी व्यक्ति खुद है। तो इसी प्रकार से अंततः जो हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं आज इन तीनों गुणों में, उसके उत्तरदायी कौन है? हम खुद हैं, हम खुद हैं। ना तो उसके दोषी भगवान है और ना उसके दोषी प्रकृति के तीनों गुण हैं। वो हमको जबरदस्ती नहीं पकड़ते हैं। हम कब उस कब कैदी बन जाते हैं, वांटेड कब हो जाते हैं? कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकट स्थे माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही हम कृष्ण को भूलकर कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, ये भूल करके जैसे ही हम भोगवांछा करते हैं, भोगवांछा करते हैं, भौतिक जगत को भोग करने, खुद ईश्वर बनने की इच्छा करते हैं, भोगवांछा, निकट स्थे माया, माया क्या है? भगवान के नजदीक में है, बिल्कुल परछाई की तरीके से बिल्कुल नजदीक में। निकट स्थे माया तारे झपटिया धरे, तुरंत माया की झपट में आ जाते हैं, और झपट में आते ही फिर हम स्वतंत्र नहीं रहते। तो जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, हर जीव की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति जितनी संभव है उतनी मात्रा में स्वतंत्र होती है जब हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं, अपनी तटस्थ स्थिति में जब होते हैं। जब तक माया के प्रभाव में नहीं होते हैं तब तक हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारे पास होती है जितनी पॉसिबल है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है हमको, भगवान की सेवा के अंतर्गत ही वो संभव है। लेकिन जैसे ही हम उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, भोगवांछा करते हैं, वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति अभी हमारे से छीन ली जाती है, और किसको दे दी जाती है? मन, जो माया के द्वारा संचालित होता है, उसको दे दी जाती है। तो मन का कार्य क्या होता है? संकल्प विकल्प, ये स्वीकार करना है, ये स्वीकार, ये छोड़ना है, ये मन करता था हर क्षण, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक क्षण बोलेगा हाँ ये अच्छा ये ले, किस आधार पे? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के आधार पे। तो मनुष्य को जब गुलाब जामुन दिखेगा तो मन तुरंत क्या बोलेगा? आ ले लो। और जब सुअर को मल दिखेगा तो तुरंत क्या बोलेगा? आ ले लो। करेक्ट। तो सुअर की ईगो अहंकार और मनुष्य का अहंकार, सबका अहंकार अलग अलग है। ईगो मतलब आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। तो कोई अपने को रजोगुण के अंतर्गत भोक्ता मान रहा है, कोई तमोगुण के अंदर, कोई सतोगुण के अंदर, उसके अनुसार परमात्मा उसको बुद्धि दे रहे हैं, जिस बुद्धि का प्रयोग करके मन संकल्प या विकल्प कर रहा है। तो संकल्प विकल्प कौन करता है? मन। लेकिन मन को गाइड कौन करता है? बुद्धि। आपने देखा एक कोका कोला की बोतल में एक लिक्विड भरा हुआ है, आपका तुरंत मन किया अरे वाह कोका कोला पी लो, लेकिन तुरंत बुद्धि ने क्या बोला? रुको लेवल, पहले लेवल देखो ऊपर क्या लिखा है, अरे पॉइजन लिखा है। तो बुद्धि ने हेल्प किया कि पॉइजन है ये, तुम्हारे लिए नहीं है। तो माइंड ने तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर दिया, रिजेक्ट। पहले संकल्प किया था, अब क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, विकल्प, नॉट वांटेड। तो बुद्धि ऐसे हेल्प कर रही है, लेकिन बुद्धि किस बेस पे डिसाइड करती है अच्छा बुरा? परमात्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है ईगो के अनुसार, हमारी आइडेंटिटी हम क्या मान रहे हैं। तो इसलिए जो मांसाहारी जानवर है उसको मांस देख करके बुद्धि बुद्धि उसकी उसको गाइड करती है, यस यस गुड फॉर यू। लेकिन शाकाहारी के लिए दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं। जैसे बुद्धि सबको मदद कर रही है उनकी ईगो के अनुसार। तो इस तरीके से हम वर्तमान में ये तीनों गुणों के द्वारा बहुत हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन मनुष्य योनि मिलने पर पुनः वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति कुछ अंश में हमारे पास वापस आती है। तो अभी मनुष्य योनि मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? कि हमें केवल एक ही काम करना चाहिए कि अभी इन गुणों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों से। रजोगुण तमोगुण से अच्छा है सतोगुण, क्योंकि सतोगुण में ज्ञान आता है कि बंधन क्या है, ये सब ज्ञान सतोगुण में आता है। रजोगुण तमोगुण के अंदर और अधिक ज्यादा स्ट्रांग टाइट है, रस्सी और टाइट है, सतोगुण में थोड़ा ढीला है, लेकिन मुक्त वो भी नहीं है। तो माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये जो हम भक्ति सेवा करते हैं भगवान की, उसका परिणाम होता है कि हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से धीरे धीरे जिस अनुपात में हम शरणागति लेते हैं उस अनुपात में हम इनसे मुक्त होते जाते हैं। जिस अनुपात में हम शरणागति लेते हैं भगवान की उस अनुपात में हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते जाते हैं। तो इसलिए शरणागति प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि बस आज मैंने एक बार आके मंदिर में बोल दिया भगवान आप फेल हो गए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया तो लोग जब ऐसा होता तो बड़े परेशान हो जाते हैं, तो मंदिर में आके भगवान मैं बहुत परेशान हूँ बस आज से मैं आपकी शरण में हूँ। लेकिन वो शरणागति पूरी नहीं है, क्षणिक है। इसलिए वापस गए समस्या सॉल्व हो गया फिर दोबारा से वही भोग विलास से काम शुरू कर देते। इसका अर्थ क्या है? शरणागति पूरी नहीं थी, अभी थोड़ी सी हुई थी क्षणिक। तो ये जो भक्ति प्रोसेस है ये पूर्ण शरणागत होने का प्रोसेस है। हम प्रारंभ करते हैं छोटी शरणागति से। इसीलिए वैदिक भक्ति जो प्रथम चरण है भक्ति का, उसके अंदर हम एक गुरु की स्ट्रिक्ट कंट्रोल में ऑर्डर में कार्य करते हैं। ये करो यस सर, ये मत करो ओके, जो बोलेगा गुरु करना है। उससे वो जो शरणागति की भावना है वो डेवलप होती है, जो भगवान के लिए शरणागति होने के लिए हमको तैयार करती है, गुरु के प्रति शरणागति। तो फिर कोई तर्क नहीं, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नो आई डोंट वांट डू इट, नो डू इट, नो आर्ग्यूमेंट डू इट। तो ये जो मन का जो उच्छृंखलता है, फ्रीडम, कभी ये करो संकल्प विकल्प, मेरे को ये अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, मेरे को ये अच्छा लगता है मैं ये नहीं करूंगा, ये जो मन का जो वेग है इसको कंट्रोल करने के लिए वैदिक भक्ति, सरेंडर टू गुरु, नो योर चॉइस। इसलिए ट्रेडिशनली ब्रह्मचारी जब गुरु कहेंगे खाना खाने के लिए तभी खाना खाएगा, नहीं तो खाना भी नहीं खाएगा। एक तुच्छ सेवक की तरह से घर घर जाके भिक्षा मांगेगा केवल गुरु के लिए, सब ला करके गुरु के पास, ऐसा नहीं अरे मैं इतना लेके आया मेरे को इसमें थोड़ा दो कमीशन, कम से कम मेरे खाने को दो थोड़ा, नो कंप्लीट सर, मेरा कुछ नहीं है सब गुरु का है, मैं केवल उनका किंकर दास हूं। ये भावना डेवलप होती है शरणागति, ये ब्रह्मचर्य में हमको सीखना है, ब्रह्मचर्य आश्रम गुरु की शरणागति जो हमको तैयार करती है भगवान की शरणागति के लिए। तो इस प्रकार शरणागत होकर गुरु के संरक्षण में जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में रत होते हैं तो हम धीरे धीरे इन तीनों गुणों से बाहर निकलते आते हैं, और फिर हमारी बुद्धि वो जैसे जैसे हमारी ईगो स्वच्छ होती है, वास्तविक ईगो में हम स्थिर होते रहते हैं, हम कृष्णदास हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर दया करके भगवान ददामि बुद्धि योग, मैं उनको बुद्धि तेषाम सुदीक्षाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योग, भगवान उनको बुद्धि देते हैं फिर हमको, और फिर हम समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है कि हम इन तीनों गुणों से निकलें, और इन तीनों गुणों से निकलने के लिए सरलतम उपाय है भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? वी शुड रेज अवर राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। यस, क्योंकि वो सैंक्शन हो देते हैं रिमोट कॉल, राइट, अनेक प्रकार के कारण है तो वो कहते हैं रिमोट कॉल, अल्टीमेट कारण वही है क्योंकि अल्टीमेट सैंक्शन वही कर रहे हैं। अभी कैदी को सजा हो रही है, यदि कैद खाना ही नहीं होगा तो सजा कैसे होगी, यदि जेलर ही नहीं है तो सजा कैसे होगी, तो अल्टीमेट कॉज वो है पर वो रेस्पॉन्सिबल कॉज नहीं है, उत्तरदायी वो नहीं है। यस, पाप और पुण्य उसको उसका फल इत्यादि वो निर्भर है प्रकृति के ऊपर, ये शरीर कौन दे रहा है, प्रकृति दे रही है, आदमी नहीं चिंता शरीर या वो डिसाइड करता कि मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए नो, जैसा कर्म किया या विचार किया उसके अनुसार ये मिला, मिलना लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं मेरे को ये अच्छा है, विवश होना पड़ेगा। तो वो सब अरेंजमेंट बैकग्राउंड में अरेंजमेंट कर रही है प्रकृति, और उसकी बैकग्राउंड में है भगवान परमात्मा जो प्रकृति को निर्देश दे रहे हैं, सब नियम उन्होंने बनाए हैं, ऐसा होने पर ऐसा, ऐसा होने पर ऐसा, और जिसको वो पालन कर रहे हैं।